अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गालिक की जी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
राज कोटियोर और नेशनल ज़कात फाउंडेशन पेश करते हैं जश्न चांद रात। GTA में पहली दफा चांद रात सूफी कॉन्सर्ट, जहां हम मनाएंगे चांद रात एक सूफियाना अंदाज के साथ। चांद रात की खुशियां डबल हो जाएंगी। डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चूड़ियां, फूड कोर्ट और बहुत कुछ, सब एक ही जगह, रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा। स्पॉन्सरशिप्स और डिटेल्स के लिए अभी कॉल करें 4165201372। मत भूलिए जश्न चांद रात।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773।
मॉम, मैं सुनिया करे चोरी होगी।
हाँ बेटा, ते पिछले हफ्ते स्ट्रीट विच गोलियां भी चलिया सी।
लिबरल मार्क कार्नी ते जस्टिन ट्रूडो दी कई सालां दी लीडरशिप तो बाद अपनी नेबरहुड दा रूप ही बदल गया।
जे पुलिस उनां नू फड़दी भी है, ओ सेम डे छुट जांदे ने। इना सॉफ्ट लिबरल पॉलिसीज नू रोकना पैणा।
पियर पॉलीएफ ते द कंजर्वेटिव क्रिमिनल्स नू जेल भेजणगे, कैच एंड रिलीज बेल पॉलिसीज दा खात्मा करणगे अते साडियां स्ट्रीट्स नू मुड़ सुरक्षित बनाउणगे। मैं तां उस नू ही वोट पाऊं।
मैं भी। Stay safe, beta.
This side is brought to you by Pierre Polyev and Canada's Common Sense Conservative.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
कनाडा की सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद इब्राहिम, जो बनने जा रही है आपके शहर ब्रैम्पटन में। मस्जिद इब्राहिम की तामीर का काम अपने आखिरी मराइल में है, और हर साल की तरह इस रमजान में भी आपसे भरपूर तआवुन की अपील करते हैं। बरोज जुम्मा March 21 दोपहर 3:30। ट्यून इन रेडियो 770 AM एंड ईआवाज़ टीवी ऑन March 21 एट 3:30 PM। रेडियो टेलीथॉन में हमारे साथ शामिल हो और अपने डोनेशन के जरिए इस कार्य का हिस्सा बने। मजीद मालूमात या ऑनलाइन डोनेशन के लिए विजिट masjidibrahim.ca।
ह्यूमैनिटी फाउंडेशन कनाडा और दुनिया भर में इंसानी खिदमत फराहम करने में पेश पेश है। इसमें शामिल फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इमरजेंसी रिलीफ, वाटर एक्सेस, ऑर्फन केयर, रिफ्यूजी रिसेटलमेंट एंड कम्युनिटी केयर। आइए इस भलाई काम में हमारा साथ दीजिए। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के टेलीथॉन फंड रेजिंग में शामिल होकर दिल खोलकर ताउन कीजिए। बरोज बुध March 26 दोपहर 3:30। ट्यून इन रेडियो 700 आवाज 770 AM एंड ई आवाज टीवी फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन टेलीथॉन ऑन March 26 एट 3:30 PM।
इस रमजान में अपने प्यारों के साथ शाही अफ्तार बफे एंजॉय करें सिर्फ नान कबाब पर। ऑल यू कैन ईट फीस्ट। एपिटाइजर्स में शामिल गर्मा गर्म मंटू, समोसे, बुलानी, सूप, गार्लिक नान, इसके अलावा सिजलिंग शामी कबाब, तंदूरी कबाब, चपली कबाब, ऑथेंटिक कोफ्ता एंड सब्जी कोरमा, खुशबूदार शाही कबूली और जमारूद पुलाव, मीठे में फिरनी और गर्मा गर्म करारी जलेबी। Starting from March 5th, every evening at 5042 Satellite Drive, Mississauga and 1780 Markham Road, Scarborough. A taste of home served with love. Seats are limited. Reserve now at nankebab.com. Nan Kebab, where Ramadan feels like home.
Assalamu alaikum. This is Imam Yusuf Badat. Our elderly deserve care rooted in dignity and faith. Muslim Welfare Canada's long-term care facility will provide halal meals, dementia support, and compassionate nursing, all within an Islamic environment. Become a monthly supporter or make a one-time donation to provide this crucial service. Kindness to parents is an act of perpetual charity. Honor our elders today. You can donate online at mwcanada.org or call 866-754-3111.
इफ्तार को और भी खास बनाइए फेस्टिव एसेंशियल्स के साथ। घर ले आएं टिल्डा प्योर बासमती राइस, सुफरा हलाल चिकन और भी बहुत कुछ सिर्फ आपके नजदीकी रियल कैनेडियन सुपर स्टोर और लॉबलॉस से। इस रमजान हर मील के साथ खुशियां बांटिए।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। आपका हमारा साथ आज भी डायल पर तकरीबन 7:15 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आप हमारा फोन नंबर पर भी रेडियो सुन सकते हैं 6478724900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही स्पॉन्सर्स के नंबर भी हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है तो जनाब तमाम ही सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे ई आवाज टीवी एंड रेडियो के नाम से है। हमारा यूट्यूब चैनल, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और तमाम ही हमारे जो शोज होते हैं वो आपको वहां हमारे यूट्यूब पर आप अपने टाइम से अपनी सहूलत के हिसाब से देख सकते हैं। हमारा ई आवाज टीवी तमाम ही आईपी टीवी बॉक्सेस पर मौजूद है। इसे उर्दू या पाकिस्तानी कैटेगरीज में आप आसानी ढूंढ सकते हैं और इसको अपने फेवरेट में भी ऐड कर लें। गर्मा गर्म खबरों के लिए शाजिया मलिक साहिबा जो हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में दरामद हो चुकी हैं। आइए उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बल्कि बरामद हो गई, दरामद नहीं है, दरामद तो थोड़ी देर बाद करेंगे, इनको बरामद हो गई हैं, इम्पोर्ट हो गई हैं, तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS फिर आज कंजर्वेटिव बन के आ गया हूं, हालांकि मैंने तुम्हें कल ही आंकड़े दिए हैं कि उन्होंने अब हारना है, जब से मॉड करनी आ गया उन्होंने हारना है। तुम्हें बात ही नहीं मेरी समझ आ रही है।
मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है।
हाँ, जो मैंने कहा था जिस वक्त जो ट्रूडो साहब थे,
स्टेटमेंट चेंज ना करें,
नहीं बंदा चेंज हो गया, तो
ये अब बंदा हो या काला हो, नीला हो, पीला हो, अभी तो कंजर्वेटिव की हुकूमत
आएगी, इसलिए कि ट्रूडो साहब थे। ट्रूडो साहब
ये लोग सुन रहे हैं वो बड़े होशियार हैं।
नहीं, होशियार तुम उनसे ज्यादा हो
और उन्हें हर एक चीज एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। वो तो कयामत के दिन तो हिसाब देना होगा।
लेकिन मुझे तुम्हारा सेंटेंस भी याद है, तुम्हारा सेंटेंस भी, तुमने कहा कि अभी बड़े दिन पड़े हुए हैं शाजिया जी, कुछ भी हो सकता है, जिस वक्त मैंने ये कहा था
यू वॉज लाइक फॉर श्योर।
हाँ फॉर श्योर,
मैंने कहा एक स्टेटमेंट आज भी जो कंफ्यूज का निशाना बन रहे हैं, ट्रम्प साहब भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं आपके लीडर को।
यस यस,
वो कह रहे हैं जो बयानात हैं वो बयानात
नेगेटिव हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा
है। आई डोंट केयर, ट्रम्प साहब बेसिकली मेरा जाना नहीं हो रहा यू।
असल में
इतनी ढील देने की नहीं, मेरी गलती है,
ये तुम्हारी गलती है।
चला जाता ना,
तुम्हें कब से डकफोर्ड साहब बुला रहे थे, बोल रहे थे मेरे डेलीगेशन के साथ जाओ, ये नलायक सारे जमा हुए हैं, ये तुम्हें जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा ट्रम्प साहब के साथ, उनको जरा प्यार मोहब्बत में की जबान
मतलब सोचिए कितना बड़ा मजाक था। एक लाल रंग की टेस्ला जो है वो ट्रम्प साहब को गिफ्ट हुई है या खरीद लिए, चले खरीद लिए, तो भाई ये कहां से बन के आई है, आपके मुल्क में बनी है?
बिल्कुल बिल्कुल,
सारा प्लांट तो वहाँ चाइना में लगा हुआ इसने।
यस, देखो जरा,
एक तरफ आप कहते हो जी मेड इन अमेरिका,
कनाडा, मागा है ना,
दूसरी तरफ आप जो है वो चाइनीज में,
चाइना से मंगवा रहे हैं, व्हाट इज दिस।
अच्छा, चाइनीज की मैं पढ़ रहा था, दो मिनट बात करते हैं फिर आप न्यूज पे। 200% ड्यूटीज लगा दी कनाडा ने ईवी पर जो उनकी चाइनीज है, अमेरिका ने भी लगा दी पूरी दुनिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई खासकर BYD जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी ईवी कार है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, मैंने उसकी वीडियोस काफी
जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा, उन्होंने क्या किया, 200% आपने ड्यूटी लगा दी, गाड़ी के ऊपर लगाई ना, गाड़ी को खोल दो, उनकी साइंस देखें कैसी है, गाड़ी को खोल दो। अच्छा जी, कैसे खोल दें, बैटरियां बेचो, टायर बेचो, एक्सल बेचो, دنیا بھر میں ای وی بیٹریز جو ہیں
ہاں
وہ چائنیز مینوفیکچرنگ
بالکل
کر لو جو کرنا ہے نہیں خریدو ہماری گاڑیاں
ہاں ہاں
یار یہ ہوتا ہے اسمارٹ ہے
اسمارٹ
انہوں نے کہا بند گاڑی نہیں چاہیے نا گاڑی کھول دے لائٹیں دنیا بھر میں لائٹس کا بمپر کا سارا سامان
اسمارٹ ہے
چائنا سے آتا ہے
یس چائنا ہاں
تو کہتے تم
ابھی تم گئے تھے تو تم کہہ رہے تھے ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ان کی آنکھیں بند ہیں ابھی نظر نہیں آ رہا
سوچے مجھے اس بات سے اس پہ کیا کاؤنٹر کیا سوچے وہ اتنا سا دیکھ کے یہ کچھ کر گئے اگر انہوں نے جس دن پوری آنکھیں کھولی کیا کرے اتنی اتنی آنکھوں میں دنیا کی بہن بجا کے رکھی
دنیا کی آنکھیں بند کر دی
آنکھیں بند کی گئی تو جب یہ اپنی پوری آنکھیں کھولیں گے تو یہ تو یادو مادل بن جائیں گے
بالکل
جائیں گے سب
بالکل بالکل کھا جائیں گے اچھا بڑی شانتی سے چلتے ہیں بڑے آرام سے کوئی بیان نہیں دیتے کوئی بھڑکتے نہیں ہیں ہمارے پنجابیوں کی طرح کوئی ایسے کر دیں گے اور ایسے کر دیں گے جو کردے
پٹے کیا ہوتا ہے
کردے پٹے تھے یہ تھے وہ کچھ نہیں آرام سے وہ آتی ہے بالکل ایک ڈال سی ہے وہ انہوں نے اسپورٹس پرسن سے رکھی
رپورٹ لگتی
ہے بس کر کے اس کے پاس چلی جاتی ہے اگلے دن پتا چلتا ہے جی 400% ٹیرف آ رہے ہیں جی چائنا کی طرف سے ہیں کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کوئی بھڑکیلے بیان نہیں کوئی مکے ایسے ایسے جیسے ہمارے لیڈر دکھاتے ہیں کوئی نہیں دکھاتے اپنا آرام سے کام کر کے جو تمہاری والی یہ والی بات ہے نا اس نے تو آج ٹرمپ صاحب کے دوستوں کو اتنا سارا ہوگا جو تم نے یہ بات کی ہے نا بڑی ہی تم نے تکلیف سے بات کی انہوں نے کہا گاڑی نہیں دینی لو ہم کھول دیتے
میں کیونکہ وہاں گیا تو ان کی سائنس دیکھی میں نے نا وہ بہت ہی تیز ہے بہت تیز ہے کہتے بند گاڑی نہیں دیتے گاڑی کھول دیتے
کھول دیتے
ٹائر سے لے کے بیٹری پانا ہر چیز جو ہے نا وہ الگ الگ وہ بھیج دو دنیا بھر میں تو خود ہی جوڑ لیں گے
لون جوڑو
یہ
ہم یہ پوری گاڑی آپ کو 100 روپے میں جوڑ کے دیتے تھے اب 400 کی تم جوڑو
خود ہی جوڑ لو
خود جوڑو 400 کی
بس یہ دنیا بھر میں بزنس ایسے ہوتا ہے یہ مینوفیکچرنگ پاور
کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات
لیکن جو کارنی صاحب کو فیور دے رہے ہیں مجھے اس پہ سمجھ نہیں آ رہا ٹرمپ صاحب کو ہو کیا کیا مجھے سب سے بیان دیا ہے انہوں نے مجھے اب تک
سمارٹ ہے نا یہ بھی کارنی صاحب بھی جارج کلونی سے ملتے ہیں اصل میں
ان کا جو پورٹ فولیو بہت ہیوی ہے
ہیوی ہے لیکن وہ بات جس طرح کرتے ہیں نا وہ بات بھی بڑے پیار سے کرتے ہیں مارک کارنی صاحب مارک کارنی جو ہے وہ کراچی اور جو پی ایف پالی ایو ہے نا وہ پنجاب سے ہیں وہ ایسا بھڑکیلا بیان دیتے ہیں کہ اگلا بندہ بھڑک جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جیسن کینی والی پارٹی کے تو وہ منہ کھولتے ہیں غلط پھنس جائے اور میں نے آپ سے کہا تھا آج سے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا آپ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا کنزرویٹو کو بھروا دے گا
بھائی جان آپ میری بات مانو کرنی صاحب کراچی سے ہیں اور پی ایف پالیئر صاحب جو ہیں پنجاب سے ہیں بس تو یہ بھڑک جاتے ہیں یہ بھڑکیلا بیان دے دیتے ہیں اور جو ہے ٹرمپ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں یہ کرنچی کے ہیں نا تو پی آر سے بات کر جاتے ہیں پوری اور بھڑکتے بھی نہیں ہیں تو کام ہو جاتا
تو ٹیری ویری پھر ہٹ جائیں گے اگر کارنی صاحب
ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں میرے خیال میں اور اندر 5-6 مہینے کی گیم ہے
یہ زیادہ اس سے زیادہ نہیں
اس سے زیادہ نہیں چلے گا
ان شاء اللہ چلیں
ان کے آج کے بھی آپ کو بیان سناتے ہیں بڑے پی آر بیان ٹھیک ہے جی اچھا جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی عامر کی بات میں مجھے بھی ہنسی بار بار آ رہی ہے انہوں نے گاڑی کھول دی اچھا جی دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی فیصل چٹا صاحب فیصل چٹا جو ہیں جناب ان کے 2 ریسٹورینٹس ہیں ایک مسز ساگا میں ایک اوکویل میں آپ دونوں میں جا کے انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں پلیز جائیں کھائیں پیئیں مزے کریں ٹھیک ہے جی بہت زبردست وہاں پہ جو ہیں ان کے کوکس ہیں کھانا اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ ضرور انجوائے کا مزہ لیں گے اور جناب ہماری ڈاکٹر نازیہ رحمان ڈینٹسٹری آن رج وے پہ ہوتی ہیں بڑے ہی پیارے قسم کے ان کے پاس ٹولز بھی ہیں وہاں پہ لیٹسٹ قسم کے تو آپ کے دانتوں کا کچھ بھی پرابلم ہے آپ ان کے پاس جاؤ وہ آپ کو بہت زبردست سویدھائیں دیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے کیو ٹی ایل والے زبردست وہ کہتے ہیں جی ٹرک کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لے کر تو آؤ ایک دفعہ ہمارے پاس اور ایک گیٹ سے آپ نے جانا ہے 15 منٹ میں انہوں نے فکس کر دینا ہے دوسری طرف سے آپ کو نکل جانا پڑے گا ہے نا تو آپ چلے جائیں گے تو کوئی زیادہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا آگے آپ نے امریکہ جانا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہو ورنہ واپس کینیڈا واپس آ جاؤ ہے مڑ جاؤ وہاں سے نیپنی کی لوکیشن سے اور جناب اچھے کپڑے ملتے ہیں اسپیئر اینڈ مکے پہ بریٹانیا روڈ پہ ان کا نیا لوکیشن آیا ہے بہت زبردست ان کے پاس اٹالین جو ہیں وہ چیزیں ہیں تو اگر آپ اچھے کپڑوں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ جائیے اور ان سے جا کے کپڑے خریدیں اینڈ جناب ہمارے سلطان بھائی, ون اینڈ اونلی سلطان بھائی, برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں, بہت زبردست بنڈل ڈیلز آپ کو دیتے ہیں الیکٹرانکس کی. تو اگر آپ اپنا گھر چینج کر رہے ہیں, گھر میں سامان چینج کر رہے ہیں, نیا گھر لے رہے ہیں, کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, تو آپ کو نیا اگر چاہیے ہے جو سارے اپلائنسز, تو آپ سلطان بھائی کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست. اور ہمارے عدنان الوی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ آؤ, بہت زبردست ہم آپ کو سروسز دیتے ہیں, بہت سے انویسٹمنٹ کے طریقے بتاتے ہیں. لائف ٹائم گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے پاس آپ جاؤ, آپ ان سے جو ہے بہت انویسٹمنٹ کی سہولتیں لے سکتے ہیں. ہمارے راجہ بادشاہ عامر کا نام لینا ہے, 1775 آپ کے بچیں گے. ٹھیک ہے جی, میرا یا ذیشان کا نام نہیں لینا, میرا نام لیا تو $400, ذیشان کا نام لیا $100 صرف بچے گا. تو آپ نے عامر کا نام لینا ہے. آل اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, ہوم اور آٹو انشورنس پہ بہت سارے آپ کو جو ہے چھوٹ دیتے ہیں, آپ جائیں ان سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں جی کہ کرنی صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے کہا جی کہ اپروپریٹ ٹائم جس وقت ٹریڈ کی بات کا آئے گا تو میں جا کے بات کروں گا ٹرمپ صاحب کے ساتھ. آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے جو کرنی صاحب ہیں وہ انکولٹ کے اندر تھے کل, تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جیسے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم دونوں سوورن سٹیٹس ہیں اور سوورن سٹیٹس کی طرح ہی بات کریں گے, اور بہت کچھ ہمارا بات کرنے والا جو ہے وہ رہتا ہے. انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ تو ٹرمپ صاحب بول رہے ہیں کہ یہ انیکس کر دیں گے ان کو کینیڈا کو, اور ٹروڈو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جی ہماری اکانومی کلیپس کر دے, تو کیا آپ بھی یہی والا باتیں شیئر کرتے ہیں ٹروڈو صاحب کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ٹرمپ صاحب بہت کچھ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو یہ فینٹنل کرائسس جو ہے وہ ختم کرنا ہے, یو ایس اے کے اندر گڈ ہائی پیئنگ جابز لانے ہیں, انویسٹمنٹ لانا ہے, اور جتنے بھی یو ایس کے فرمز باہر ہیں ان کو اندر لانا ہے. میں ان سب چیزوں کا ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور وہ بھی اس چیز کا ریسپیکٹ کرے گے کہ میں بھی یہی سب کچھ چاہتا ہوں کینیڈا کے اندر. تو ہم کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے کولیگز کو جو ہے سیف گارڈ کرنا ہے, اور اپنے کینیڈا کی سوورینٹی کو بھی بچانا ہے. انہوں نے کہا تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ رہے گا ہمارے ڈسکشن کا. اور ٹیرفز کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کینیڈا یو ایس میکسیکو یہ جو ہے ڈیل, یہ جو 2018 میں انہوں نے کی تھی, اس کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے وہ بنتا ہے. تو ایک براڈر کانورسیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی. نینوز کا جو آج ایک ریسرچ آیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یو ایس کینیڈا کے جو یہ ٹائز ہیں یہ ٹاپ آج کل پرائیورٹی ہیں کینیڈینز کے لیے. 26.8% نے کہا یہ ہماری سب سے مین ایشو ہے جس کو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ سالو کرے. جابز اینڈ اکانومی کو 16.7% کینیڈینز نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے. کنزرویٹوز جو ہے اکارڈنگ ٹو نینوز, دوسرے تو جو ریسرچ ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو نینوز جو کنزرویٹوز کا جو فیوریبل پوائنٹ ہے فیڈرل لیول کے اوپر وہ 35% ہے, اور لبرلز اب صرف ایک پوائنٹ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے کنزرویٹوز اور لبرلز کے بیچ میں 20 points کا ڈفرنس تھا, یعنی کہ لبرلز 20 points نیچے تھی, لیکن جب سے کارنی صاحب آئے ہیں تو ان کے ریٹنگز جو ہیں کافی بڑھ گئے ہیں. ڈک فورڈ صاحب جو ہیں جی, انہوں نے آج اپنی جو ہے نئی ان کی کیبنٹ نے سویئرنگ ان کی ہوئی ہے, اور انہوں نے آج فورڈ صاحب نے کہا کہ جی میں ایک پراپر کیبنٹ جو ہے وہ میں لانا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم جو سب چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. تقریباً 36 منسٹرز جو ہیں ڈک فورڈ صاحب نے اس کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے. اس میں کچھ لوگ تو سیم ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اب ایڈیشنز ہیں. اچھا تو ہم یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز ویسے ہماری آج ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر بھی میں آپ کو کچھ مین مین چیزیں بتا دیتی ہوں. پیٹر بیتھن سیلوی جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہی رہیں گے, آپ کو پتا ہی ہے نا سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو یہی ہوتا ہے. سلویا جونز جو ہیں ہیلتھ منسٹر ہی رہیں گی اور ڈیپٹی پریمیئر ہی رہیں گی. سٹیفن لیچے جو ہیں انرجی اینڈ مائنز کے ہی منسٹر رہیں گے. کچھ چینجز جو آئی ہیں وہ پال کلینٹرا جو ہیں وہ اب ایجوکیشن منسٹر رہیں گے, اور ان سے یہ پورٹ فولیو میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ لے لیا گیا, کافی امپورٹنٹ ایجوکیشن کا پورٹ فولیو. جل ڈنلوپ ان کے پاس تھا ایجوکیشن کا پورٹ فولیو, ان سے لے کے ان کو ایمرجنسی پریپیرڈنیس دیا گیا ہے. راک فلیک جو ہیں ان کو منسٹر آف میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ بنایا گیا ہے. مائک ہیرس جو ہیں ان کو منسٹر آف نیچرل ریسورسز بنایا گیا ہے. ٹاڈ میکارتھی کو منسٹر آف انوائرمنٹ. نیو کیبنٹ جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی جنہوں نے ٹرمپ کے ٹیرف تھریٹس کے ساتھ بات کرنا ہے. اس میں ایک اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ زی حامد, آپ کو پتا ہی ہے پاکستانی بائی اوریجن ہیں اور ملٹن سے ہیں, ان کو ایسوسیٹ منسٹر آف آٹو تھیفٹ. دیکھو جی بنایا بھی پکستانی نو کس طرح کا منسٹر ہے, انہوں نے پتا پنجاب تو مندے لے آنے پنجاب پولیس نے آٹو تھیفٹ کا ان کو ایسوسیٹ منسٹر بنایا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو اپنے نیفیو تھے مائیکل فورڈ, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ہی از ناٹ یو نو
एस्पायरिंग टू रन अगेन, तो उनको रिप्लेस किया है ग्रहन मैकग्रेगर ने। लेकिन एनडीपी के जो लीडर हैं मैरिट स्टाइल्स, वो काफी भड़की हुई है। वो पहले भी कहती थी तुम्हारे जो साइज है कैबिनेट का बहुत बड़ा है, और वो पहले भी कहती रही है कि आप एमपीपीज को इसलिए ज्यादातर ये लाते हो क्योंकि आप उनको रेजेस देना चाहते हो, और खासतौर पर अगर कैबिनेट पोजिशन देते हैं तो $50,000 आप ज्यादा इनको देना चाहते हो, तो इसलिए आप ये इतनी सारी लंबी चौड़ी अपनी कैबिनेट रखते हो। तो काफी उसके ऊपर है। बहरहाल जी, अब उन्होंने तो अनाउंस कर दिया 36 अपने मिनिस्टर्स। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी, वो ट्रोनो को $2.255 बिलियन जो है वो देगी टू कंस्ट्रक्ट लो कॉस्ट जो हाउसिंग है, रेंटल यूनिट्स, और इसके अंदर जो है अफोर्डेबल यूनिट्स जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो जो मेयर है ओलिविया चाओ, उन्होंने कहा जी ये बड़ा ही हिस्टोरिक एक हमारा हाउसिंग एग्रीमेंट होया है, इसके अंदर 7 न्यू रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसको फंड किया जाएगा, 4,831 न्यू रेंटल यूनिट्स बनेंगे, और इसके अंदर 1,075 जो है अफोर्डेबल यूनिट्स रहेंगे। इसके अंदर जो है ट्रोनो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा $234.83 मिलियन, और ये फाइनेंसिंग जो है इसको एडमिनिस्टर करेंगे कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्प अंडर एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन लोन प्रोग्राम। तो ये जनाब और कुछ घर जो हैं वो आ रहे हैं। स्टैट्स कनाडा की आज खबर आई है और उसके मुताबिक जी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ 41 मिलियन से अब ऊपर चली गई है एज ऑफ जनवरी 1, और इसमें जो लेकिन पेस ऑफ ग्रोथ है वो काफी कम हुआ है, हालांकि थर्ड क्वार्टर में 2023 में ये काफी ऊपर चला गया था। टोटल नंबर जो है वो वाज अप 63,382 कंपेयर्ड विद October 1, 2024 फॉर क्वार्टरली ग्रोथ रेट ऑफ 0.2%, जो कि स्लोएस्ट था सिंस 2020 के फोर्थ क्वार्टर से, क्योंकि उसमें आ गए थे बॉर्डर के रिस्ट्रिक्शंस पेंडेमिक के बीच में। नंबर ऑफ नॉन पीआरस जो फर्स्ट क्वार्टर में है वो डिक्रीज किए हैं सिंस फोर्थ क्वार्टर 2021, 28,341 फ्यूअर नॉन पीआरस जो है वो कंट्री में आए हैं एज ऑफ जनवरी 1 देन October 1, 2024। पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करी है 744,324 और 1.8% इन 2024। तो इसलिए जनाब जो है कोई इतना भी मतलब अनी नहीं भाई, ये तो यानी इतनी तो जो है महाराष्ट्र की जो है शायद पॉपुलेशन है। अच्छा जनाब, ट्रंप साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं वे इन कर रहा हूं जो कनाडा की पॉलिटिक्स है उसको, मैं यानी कि बड़े गौर से देख रहा हूं, और उन्होंने कहा जी कि मैं रादर लिबरल्स के साथ डील करना पसंद करूंगा देन कंजर्वेटिव पार्टी जो है, और उन्होंने कहा जी कि इट इज ईजियर टू डील विद द लिबरल्स एंड मे बी दे आर गोइंग टू विन, यानी कि बहुत बड़ी भी उन्होंने बात कर दी है। उन्होंने कहा कि बट एनी वेज जो कोई भी विन करता है आई डोंट रियली केयर। पीए पॉलीएफ का नाम तो नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा दिस कंजर्वेटिव रनिंग इज स्टूपिडली नो फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसे उन्होंने बड़े सख्त वर्ड्स यूज किए, और उन्होंने कहा जी कि वो बहुत सारे नेगेटिव चीजें बोलता है बट आई डोंट केयर, आई केयर लेस, उसको जो भी कहना है वो कह सकता है। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम कनाडा को जो है अपनी 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फॉल्स क्लेम और भी किया, उन्होंने कहा जी कि यूएस सब्सिडीज देता है कनाडा को $200 बिलियन पर ईयर की, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा, कनाडा का ओवरऑल ट्रेड सरप्लस जो है यूएस के साथ 2023 में वो $94.4 बिलियन था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ गुड्स ही नहीं है सर्विसेज भी शामिल हैं। तो मतलब ट्रंप साहब डेफिनेटली इस वक्त फेवर कर रहे हैं इनको, एक तो पढ़े लिखे हैं, फिर ऊपर से इनकी अपनी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, तो जाहिर है जो इनकी अपनी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए होते हैं लोग उनको जरा ये फेवर भी करते हैं, लेकिन बहुत संभल के भी बात करते हैं कर्णी साहब जो है, तो शायद इसलिए भी उनको पसंद आ रहे हैं। अच्छा जनाब, द बिग ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि हमने कल आपको बताया ही था कि ट्रंप साहब बात कर रहे थे पुतिन साहब के साथ, पुतिन साहब जो हैं वो एग्री कर गए हैं 30-day हॉल्ट के ऊपर ऑन अटैक्स ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स इन यूक्रेन आफ्टर अ लेंथी लॉन्ग फोन कॉल विद ट्रंप साहब। और वो लेकर वो कहते हैं जी, व्हाइट हाउस ने कहा कि डिफरेंसेज अभी भी हैं, क्रेमलिन ने कहा कि हां बिल्कुल डिफरेंसेज हैं, लेकिन अब मजे की बात क्या है कि व्हाइट हाउस का बड़ा एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है, क्रेमलिन ने जी पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट डाला है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके के ऊपर बातचीत करनी जरूरी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इन्होंने कहा जी कि हम मिलकर काम करेंगे, बायलैटरल टाइज को बढ़ाएंगे, हॉल्ट करेंगे ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करना, और रेफ्यूजीज को वापस आप करेंगे, नहीं सॉरी वॉर कैप्टिव जो है उनको आप वापस करेंगे, और मिडल ईस्ट में हम मिलके बैठेंगे और जो मिडल ईस्ट का मसला है उसको भी इकट्ठे जो है हम सॉल्व करेंगे।
जो क्रेमलाइन की तरफ से आई है पूरी लिस्ट, उसमें ये चीजें तो है ही है, लेकिन उसमें ये उन्होंने कहा जी कि हम जो पीस है मैरीटाइम पीस एंड ब्लैक सी उस पर बात करेंगे, फुल सीज फायर की तरफ जाएंगे, परमानेंट पीस की तरफ जाएंगे, और उसके साथ साथ जो इनके कंसर्न्स हैं कि भाई ये हमारे दरवाजे पे बिठा के नेटो को मत बिठाओ, ये आप नहीं करेंगे, और फिर उसके अलावा जो है यूएस जो है वो सेपरेटरी उनकी उन्होंने फिर कहा था कि मुलाकातें भी हमारे ऑफिशियल्स जो है किसी प्लेस पे करेंगे। उसका पहले तो नहीं बताया गया था, लेकिन आज की खबर थी कि जी सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ यूएस जाके मिला है, तो वो भी बात चलनी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम डेफिनेटली मिडल ईस्ट में आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा कि भाई ईरान जो है उसके साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, बट यू हैव टू एंश्योर कि वो कभी भी इसराइल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे। तो ये जनाब बातें हुई हैं, लेकिन जो है ये अच्छी खबर है। अब इसमें यूएई का जनाब बहुत बड़ा रोल है। यूएई ने बड़ा सक्सेसफुली मीडिएट किया है द न्यू एक्सचेंज ऑफ वॉर कैप्टिव्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और इसमें 175 कैप्टिव्स जो हैं ईच साइड से, तो वो जो हैं वो एक दूसरे की जगह पे, यानी कि रशियन जो हैं उन्होंने छोड़े हैं यूक्रेनियन, यूक्रेनियन ने छोड़े हैं रशियन, तो तकरीबन जो हैं ये कोई 340 के करीब जो लोग हैं ये एक्सचेंज हुए। ऑल टुगेदर जो अभी तक यूएई ने मीडिएशन इनके बीच में की है उसमें 3,223 लोग जो हैं रशिया और यूक्रेन की तरफ से अपने अपने घरों में पहुंचे हैं। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने शुक्रिया अदा किया रशियन और यूक्रेन के दोनों ऑफिशियल्स के साथ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और उन्होंने कहा जी कि इसमें इस क्राइसिस में हमारा बहुत बड़ा रोल था और हमने बड़ा सक्सेसफुली एक्सचेंज किया। ये तकरीबन 19th एक्सचेंज था ऑफ इट्स काइंड जिसके के अंदर यूएई ने जो है मीडिएशन का रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा जी कि यूएई अपना ये रोल जो है प्ले करता रहेगा क्योंकि दोनों कंट्रीज के साथ हमारे बड़े स्ट्रांग जो हैं वो टाइज हैं, और हम वैसे भी कमिटेड हैं फॉर पीस एफर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड एड्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन रेफ्यूजीज एंड कैप्टिव्स। तो इसलिए जो है उसकी आज यूएई की दुनिया ने काफी तारीफ की। अच्छा जनाब, एक और भी यूरोप के अंदर आज बहुत ही बिग 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 न्यूज है, और इसने काफी स्यापे भी डाले हुए हैं, और ये और आने वाले दिनों में स्यापे डालेगी। एंड दिस न्यूज इज रिगार्डिंग फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस ने आज अनाउंस किया जी कि वो अपना जो वन ऑफ द मेन एयर बेसिस है लुसुई, अगर मैं सही नाम ले रही हूं क्योंकि ये फ्रेंच नाम है, लुसुई का जो है उसमें होस्ट करेंगे ये न्यूक्लियर वेपन्स। इसकी सारी डिटेल्स जो है आज जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रों साहब उन्होंने दी, और उन्होंने कहा जी कि मैसिव इन्वेस्टमेंट हम करेंगे इसके अंदर टू हाउस टू राफेल जेट स्क्वाड्रन्स टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, और उन्होंने कहा जी इसके अलावा मॉडर्न न्यूक्लियर मिसल्स का स्टोरेज जो है वो भी यहां पर रहेगा, और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये दिस इज जस्ट अबाउट 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जर्मन बॉर्डर्स। तो इस तरह से वो जर्मनी को भी बड़ी इसमें सहूलत हो सकती है। जर्मन चांसलर इन वेटिंग जो है फ्रेडरिक मर्स, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल वो जो है वो बात करेंगे फ्रांस के न्यूक्लियर डिटेरेंट के लिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा फियर बढ़ गया है कि यूएस रिट्रीट कर रहा है जो सिक्योरिटी जो सारे टाइज हैं और नेटो है उससे यूरोपियन यूनियन के साथ। तो फ्रांस ने आज कहा है जी कि हम 1.5 बिलियन यूरोस जो हैं उसका इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रहे हैं, और बाय 2035 ये बेस जो है होस्ट करेगी F-5 राफेल फाइटर्स जेट्स ASN-4G एयर लॉन्च हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसल्स को। इसके अलावा वो उन्होंने आज फ्रांस में ने बात करनी शुरू कर दी है लोगों से कि अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव ये F-35 स्टेल्थ जो यूएस के जो तैयारे हैं वो आपको नहीं चाहिए है तो हम आपको राफेल देने की जरूरत है, आप ऑर्डर्स डाल सकते हैं विद डसॉल्ट एविएशन। इसके ऊपर जो आज जर्मन लॉ मेकर्स हैं उन्होंने भी अपने वहां पे एक वोटिंग कराई थी जिसके के अंदर ये कहा गया था कि हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं अपने डिफेंस के लिए क्योंकि ट्रंप साहब वापस आ रहे हैं। जर्मनी ने तो जनाब हद ही कर दी है। जर्मनी हैज अनाउंस्ड अ फंड ऑफ 1 ट्रिलियन यूरोस, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हम डिफेंस के ऊपर अब कमिट कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं कुछ भी कमिट नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज को हमने गैप को फिल करना है। इट इज अ ह्यूज 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 अमाउंट कीपिंग इन व्यू कि जर्मनी जो है उसमें काफी वो जो है वो डेट फाइनेंसिंग में भी चल रहा है, तो 1 ट्रिलियन यूरोस का फंड इन्होंने जो आज क्रिएट किया है अपने डिफेंस के लिए, ये आज रियल बिग न्यूज है यूरोप के अंदर भी रियल दुनिया में भी। नेतन्याहू साहब जो है जी वो अपने किल स्प्री के ऊपर जो है वो जारी है क्योंकि उनको तो जो है वो लाइसेंस टू किल मिला हुआ है, और उन्होंने कहा जी कि हम ये एयर स्ट्राइक्स जिस के अंदर अभी कल भी मैंने आपको बताया था ओवर 400 पैलेस्टीनियंस की गाजा में डेथ हुई थी। उन्होंने कहा जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे, आज एक टीवी के ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त तक हमारे मकसद पूरे नहीं होंगे जिसमें कि हम मैस को पूरी तरह से खत्म करना है उस वक्त तक हम सेकेंड फेज ऑफ जो सीज फायर टॉक्स हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो दैट विल बी हेल्ड अंडर फायर। उन्होंने कहा जी कि जो हमास है उसको हीट तो समझ में आ गई होगी हमारे जो अटैक्स की इन द लास्ट 24 आवर्स और हम उनको बता देना चाहते हैं कि उनके एलिमिनेशन रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस और जो प्रॉमिस है कि गाजा कभी भी इसराइल के लिए थ्रेट नहीं साबित होगा जब तक हासिल नहीं ये सारे एम्स होंगे हम ये करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो है अब कई दिनों से ये जो सीज फायर जो कि बड़ी मुश्किलों से जनवरी 19 को आया था वो अब बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इसके साथ साथ जो थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कहा गया है जी कि बिल्कुल ये जो गाजा का नॉर्दर्न टाउन है बेत हनून और हुजा एंड एबसैन जो कि साउथ में है उनसे बिल्कुल इवैक्यूएट कर जाएं। इजरायली फोर्सेस कह रहे हैं क्योंकि ये डेंजरस कॉम्बैट जोन्स है यहां से निकलो, तो लोग आज भाग भाग के यहां से जो जा रहे हैं। इसके अलावा इसराइल ने फिर से रीटेक किया है नेटजारीन का जो कॉरिडोर है जिसने कि अगेन स्प्लिट कर दिया है गाजा को दो हिस्सों के अंदर और ये रिस्ट्रिक्ट करेगा बिल्कुल पैलेस्टीनियंस जो के जो मूवमेंट है उसको। तो पता नहीं भाईजान अब मान तो ये किसी की बात नहीं रहे हैं, शायद इनको अल्लाह जो है वो सिखा सकता है और तो इनको कोई नहीं बता सकता क्योंकि जाहिर है कि अंकल सैम जो है इनके पीछे खड़े हुए हैं तो अब इनका कुछ नहीं हो सकता। क्या आएगा आज जनाब पेरू के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है क्योंकि बेतहाशा वायलेंस वहां पे और क्रिमिनलिटी जो है वो शुरू हो गई है और प्रेसिडेंट डीना बुलार्टे जो हैं उन्होंने आज ये डिक्री दिया और उन्होंने डिप्लॉय किए हैं जो पेरू के जो फॉर द फर्स्ट टाइम ये इधर ट्रूप्स को भी लाया गया है इन द स्ट्रीट्स ऑफ लिमा और उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री पावर भी हम यूज करेंगे, पुलिस भी यूज करेंगे इन चीजों को रोकने के लिए क्योंकि ये जो है चीजें बहुत दिनों से चल रही हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस चल रहा है, किलिंग्स हो रही हैं, किलिंग स्प्री के ऊपर लोग निकले हुए हैं और ये चीजें ज्यादा भड़क गई उस वक्त जिस वक्त एक पॉपुलर इनके जो सिंगर हैं पॉल फ्लोरेस उनको जो है बड़े क्रिमिनल अटैक में मारा गया है और लग रहा है कि ये क्रिमिनल ग्रुप्स जो थे उन्होंने इनको अटैक करने की कोशिश की थी और उसके अलावा वो लोग जो हैं ये क्रिमिनल ग्रुप्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी अटैक कर रहे हैं और जितने भी ये गैंग जो हैं ये लोगों के ऊपर भी अटैक्स कर रहे हैं। वैसे तो अथॉरिटीज कहते हैं कि हमने बहुत सारे गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया है लेकिन फिर भी ये जो असेलेंट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इसके अंदर जो है ये जिस वक्त वाकया हुआ उससे पहले एक रेस्टोरेंट के अंदर भी एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें 11 लोगों की डेथ हुई थी। ये किलिंग्स और एक्सटॉर्शंस जो हैं ये अभी प्रेजेंट डे के अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट किया था 459 किलिंग्स फ्रॉम जनवरी 1 टू मार्च 16 एंड 1909 एक्सटॉर्शन केसेस इन जनवरी अलोन। तो जनाब हालात जो हैं काफी खराब हैं। अच्छा आपने ये सुना होगा कि अमेरिका ने शायद जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो आज ये सारे र्यूमर्स जो चल रहे थे इन सब के सब र्यूमर्स को जो है वो आज निखारा है इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई लिस्ट जो है हमने नहीं शाया किया है और उन्होंने रिबट किया ये ऐसा क्लेम्स कि जिसके के अंदर 41 कंट्रीज जो है उसका नाम आया था कि जी अब उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन रहेगा। इन ये जो ग्रुप है इनको बहरहाल इन्होंने तीन हिस्सों में जो है वो बांटा है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 10 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। सेकेंड लिस्ट जो है उसके अंदर 5 कंट्रीज है इरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार, साउथ सूडान और जो तीसरा लिस्ट है उसके अंदर 26 कंट्रीज हैं जिसमें कि पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस वगैरह भी शामिल हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमने इनकी गवर्नमेंट्स को हम कुछ बातें पूछेंगे लेकिन अगर उनके जो अगर वो रेलिवेंट जो डेफिशिएंसीज है उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर इधर के लोगों को हम नहीं आने देंगे, ये 60 डेज के अंदर सारी चीजें हमसे पहुंचनी चाहिए। असल में हुआ यह था कि जनवरी के अंदर जो ट्रंप साहब है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि अमेरिका के अंदर जो कोई भी फॉरेनर आ रहा है उसका जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई करे ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि जो यूएस है उसका नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो थ्रेट नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कि हमने सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाया और वेटिंग प्रोसेस बढ़ाया है, हमने किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको हमने कल बताया ही था कि बड़े सक्सेसफुल टॉक्स हुए थे तो उसकी वजह से आज तोरकम बॉर्डर जो है वो खोल दिया गया है आफ्टर 25 डेज और ये मेन आर्टरी है ट्रैवल एंड ट्रेड की दोनों कंट्रीज के बीच में। तो बहुत सारे जो ट्रक वर्ड जो स्ट्रैंडेड थे पाकिस्तान की साइड के ऊपर, वो आज जो है उन्होंने क्रॉस ओवर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन आफ्टर 25 डेज। और जो बायलेटरल ट्रेड है वो भी रिज्यूम हो गई है, ये ट्रक्स जो है गुड्स लेके अफगानिस्तान में गए। अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने इस चीज के ऊपर भी एग्री किया है कि वो जो कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर जो बना रहे थे वो भी अब नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से टेंशन बहुत बढ़ गई थी दोनों साइडों पर। यह सीज फायर जो है उस वक्त तक इन प्लेस रहेगा जब तक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग जो है वो नहीं हो जाता है। आज वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 102 मिलियन US डॉलर का फॉर रिजिलियंट एंड एक्सेसिबल माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट, जिसको रैम कहा जाता है, उसका अप्रूवल दिया है माइक्रो क्रेडिट्स के लिए। और उन्होंने कहा जी कि ये आपका जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है जिस जो कि हिट होता है बहुत ज्यादा क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस के लिए, तो उसका जो है ये हेल्प करेगा। ये एक बड़ा क्रिटिकल टूल है फॉर सपोर्टिंग लाइवलीहुड्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक की काउंटी डायरेक्टर जो हैं इन पाकिस्तान नेजे बेन हसीन ने जो है आज ये बात की है, और उन्होंने कहा जी कि ये सेक्टर जो है इस फंड की वजह से जो है फ्लोट रहेगा, और जो भी इसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो फिर जो है खासतौर पर रूरल एरियाज में आपके लोगों को मिलती रहेगी। प्रेसिडेंट जरदारी जो है जी वो वन डे के विजिट के ऊपर आज क्वेटा पहुंचे हुए। आपको पता ही है कि कल जो थे वो पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे, तो उन्होंने कहा है कि ये टेररिज्म जो है इसको बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। और आज यहां पे जो प्रोविंशियल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसको वो फॉलो कर रहे थे और ब्रीफिंग्स ले रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये टेररिस्ट जो है नेशन के बीच में डिवाइड लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिचुएशन बहुत ही क्लियर है कि स्टेट जो है वो सर्वाइव करेगी, ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है इसमें हम इनको जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी कि मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो हमारे काउंटर टेररिज्म फोर्सेस जो हैं उनको देने की जरूरत है, और बलूचिस्तान के अंदर लास्टिंग पीस के लिए जो है डेवलपमेंट भी आने की जरूरत है। उन्होंने कहा मेरे अपने दिल के बलूचिस्तान जो है बहुत ज्यादा करीब है, और हर बच्चा जो है बलूचिस्तान का मैं चाहता हूं कि वो स्कूल में जाए। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं स्कूल में जाएं और तालीम लें। इस मौके पे जो हैं वो बीबी जरदारी भी थे, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुगटी जो थे वो भी यहां पे थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये जो ऑन गोइंग टेररिज्म चल रही है जो कि अफगानिस्तान से आ रही है, तो हम हर हाल में अपना नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। आज ये सब बातें जो हैं ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जी कि वो लोग जो कि शेल्टर कर रहे हैं टीडीपी को अफगानिस्तान के अंदर, तो हम फिर अपना एक हॉट प्रोसीड शुरू करेंगे और अफगानिस्तान के अंदर जाके एलिमिनेट करेंगे एनिमीज को। तो ये आप देखें जरा पैटर्न कैसा चल गया है। एक जो है बाहुबली वो दूसरे को कहता है कि मैं तुझे दबाऊंगा, दूसरा बाहुबली जो है वो कहता है तीसरे को मैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान के अंदर घुस के मारूंगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है मैं तुम्हारे घुस के मारूंगा, अफगानिस्तान जो है इन टर्न कहता है मैं पाकिस्तान में घुस के मार। तो आप ये देखिए कि ये कितना कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ जो है यहां पे वो बना हुआ है। तो बहरहाल जी आज उन्होंने कहा जी मतलब उनका यही था कि हम घुस के मारेंगे अफगानिस्तान के अंदर, वो सब लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो ये सारे कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान के अंदर जाके एनिमी को एलिमिनेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसमें फ्रेंडशिप वगैरह कुछ नहीं आती है, और हमारी जो लीनियंट अप्रोच थी उसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन अब कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी, ये हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे मिलिट्री को, हमारे सिटीजन्स को जो है वो थ्रेटन कर रहे हैं, तो अब कोई भी दुश्मन होए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ जो है टेररिस्टों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और मुझे बड़ी हैरत है कि जब हम इनके साथ एक्शन लेने की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर खफा हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं उनको हम देखेंगे। वो कहते हैं जी कि इन द लास्ट 3 ईयर्स जो हैं बहुत सारे ये जो प्राइवेट मिलिशिया है इसको लाके यहां पे एस्टैब्लिश किया गया था हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने, जाहिर है कि पीटीआई की तरफ वो बात कर रहे थे और जिसकी के जरूरत नहीं थी। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो मुसद्दक मलिक साहब हैं उन्होंने भी टीवी के ऊपर बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट बिल्कुल डिसाइड करेगी कि ये इन टेररिस्टों को कैसे खत्म करना है, लेकिन वो बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे और डायरेक्ट कॉम्बैट होगा, उसमें जो बाकी के जनता है उसको कुछ खतरा नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा जी कि जो लोग हमारे फुट स्टेप्स पे वॉर लेकर आगे हैं और हमारे बच्चों को मार रहे हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। اپوزیشن الائنس جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، او مائی گاڈ کیا مشکل نام ہے لمبا صاحب، انہوں نے جناب آج ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ بلائی جائے گی عید الفطر کے بعد، لیکن ایک میٹنگ جو تھا وہ ہوئی تھی آج الائنس ہیڈ جو ہے ان کے محمود خان اچکزئی ان کے گھر پہ، اس کو اٹینڈ کیا ہے مجلس وحدت مسلمین کے چیف علامہ راجہ ناصر عباس، تو پارٹی کا نام بھی لمبا تے بندے کا نام بھی لمبا، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، یہ لوگ بھی تھے، سنی اتحاد کونسل کے ہیڈ حامد رضا، بی این پی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ساجد ترین، سندھ کی یونائیٹڈ پارٹی کے پریزیڈنٹ سائیں زین شاہ نہ تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک سٹرکچر ہم کو فریم ورک جو ہے وہ اس کا بنانا پڑے گا اور بہت سارے سب کمیٹیز بنانے پڑیں گے، اس سب کمیٹی میں کی ایک کمیٹی جو کوارڈینیشن ہے اس کے کو ہیڈ کریں گے کیسر صاحب، ایس آئی سی کے رضا جو ہیں دیکھیں گے، آرگنائز کریں گے افیئرز اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، آرگنائزیشن آف افیئرز اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو وہ ہیڈ کریں گے اس کمیٹی کو، لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ آرگنائز کریں گے پوسٹ عید، اے پی سی اور بہت سارے دوسرے اپوزیشن پارٹی کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ بھی کمیٹی میں لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم کو کرنٹ پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر بات کرنا ہے وتھ فوکس آن بلوچستان۔ ترین جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو بلوچستان کے اندر دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو گیپ ہے بلوچستان اور جو اسٹیٹ کے بیچ میں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ان چیزوں کے لیے ہم کو ویریس میٹنگز کرنے پڑیں گے اور پروپوزلز بھی دینے پڑیں گے، ان کے اوپر پھر ہم بیٹھ کے جو ہے آگے چلائیں گے چیزوں کو۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو شوگر کا پرائس ہے 178 سے 180 پر کے جی یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اس لیے آج انہوں نے کہا جی کہ شوگر کا ریٹیل پرائس اب 164 روپیز پر کے جی رہے گا، اور انہوں نے کیپ کیا فارمر مل پرائس کو بلو 159 روپیز پر کے جی۔ ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ایک سب کمیٹی جو ہے اس کو فارم کیا گیا ہے ٹو سبمٹ ریکمینڈیشن ان ون منتھ، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ فارم کی گئی ہے پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو کے اوپر تاکہ یہ جو رمضان کے مہینے میں پرائسز بہت زیادہ ہائک کر گئی ہے اس کو دیکھے۔ ڈار صاحب نے کہا کہ یہ پرائسز بالکل نہ تو گورنمنٹ کو نہ تو پرائم منسٹر کو منظور ہے شوگر کی پرائسز، تو اسی لیے منسٹر فار نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی جو ہے رانا تنویر حسین ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہیڈ کریں ایک کمیٹی اس کو اور اپنی رپورٹ سبمٹ کریں ایک منتھ میں پرائر ٹو فیبرری سوری پرائر ٹو اپریل 19۔ تو ایسے نواز شریف کے بیٹے جو ہیں جی حسن نواز صاحب، ان کو یو کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہے ڈیلیبریٹ ٹیکس ڈیفالٹر بائی یو کے گورنمنٹس ریونیو اینڈ کسٹمز ڈپارٹمنٹ۔ انہوں نے ایک ڈیفالٹرز کی اپ ڈیٹڈ لسٹ جو ہے اپنی آفیشیل سائٹ کے اوپر ڈالی ہے جس میں کہ حسن کا نام بھی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی فیل ٹو پے 9.4 ملین پاؤنڈز ان ٹیکسز بٹوین اپریل 5, 2015 سے اپریل 6, 2016۔ یو کے کی جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس نے 5.2 ملین پاؤنڈز کا پینلٹی ان کے اوپر ڈالا ہے اور ان کو کہا جی آپ فوراً یہ پورے ٹیکسز دو۔ حسن صاحب نے کہا جی کہ میں نے ایک ایک ٹیکس جو ہے پے کیا ہوا ہے اور یہ بہت سے سالوں کا جو ہے یہ اور ٹیکس انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا ہے۔ لاسٹ ایئر حسن جو تھے انہوں نے بینکرپسی اناؤنس کی تھی تھرو لنڈن ہائی کورٹ ان ٹیکس اینڈ لائبلٹی کیس آف یو کے گورنمنٹ۔ یو کے گیزٹ جو کہ یہ سارے پبلک ریکارڈز رکھتا ہے اس نے یہ ڈیٹیلز ان کے بینکرپسی کے دیے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ ریزیڈنٹ آف فلیٹ 17 ایون فیلڈ ہاؤس 118 پارک لین جو ہے اس نے بینکرپسی فائل کیا ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس فرام بیگم نصرت بھٹو سکھر ایئرپورٹ جو ہے وہ جلد ہی شروع ہو جائے گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا پلان جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ اس کی ساری ڈیٹیل آج پاکستان ایویشن اتھارٹی نے دیا ہے۔ پی اے نے کا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ہے عباس شیخ اور دوسرے جو افیشل تھے وہ آج وزٹ کر رہے تھے سکھر چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کمیٹی، تو یہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں محمد محسن فاروق انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپروول دیا ہے فار ٹو ویکلی فلائٹس فرام سکھر ٹو جدہ اسٹارٹنگ جولائی دس ایئر، اور اس کے علاوہ جو ہم ایکسپینشن پلانز کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کارگو ٹرمینلز بنائیں گے، رن ویز بنائیں گے تاکہ کارگو فلائٹس جو ہے اس کو بھی فیسلیٹیٹ کیا جا سکے۔ پولیس نے یو پی کے سنبھل کے اندر اب بالکل منع کر دیا ہندوستان میں کہ کوئی بھی یہ فیئر نیجا میلہ جو آپ لگاتے تھے بالکل نہیں لگا سکتی ہے مسلم کمیونٹی ٹو کمیموریٹ سید سالار مسعود غازی۔ یہ بڑے ہی سیمی لیجنڈری ملٹری فگر ہے
और 11th सेंचुरी में, और ये नेफ्यू थे जो गजनी के रूलर थे महमूद गजनी, उनके ये नेफ्यू थे। पुलिस ने कहा जी कि हम इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि आप एक इन्वेडर, प्लंडरर और मर्डरर का जो है आप मेले नहीं मना सकते हैं उनके लिए। और आरएसएस जो है वो और बीजेपी इसके लिए बहुत दिनों से बहुत इसके खिलाफ थी और कोशिश कर रही थी इस मेले को रोका जाए। आरएसएस ने कहा जी, बल्कि सुपर इम्पोज किया उन्होंने फेबल ऑफ गाजी मियां की एक और जो है कैरेक्टर के साथ, जो हिंदू वॉरियर था सुहेल देव, उसके साथ उन्होंने कहा जी कि मियां जो था ये गाजी मियां, ये तो बहुत ही विलनस कैरेक्टर था। और गाजी का मसोलियम जो है बहरेज के अंदर, वो वैसे बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ही विजिट करते हैं, लेकिन अब ये उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सुहेल देव जो था वो नेशनल हीरो था, गजनी नहीं था, वो तो उसने तो मार्च किया था बहरेज को जबकि सुहेल देव ने उसको रोका था, और ये इन्वेडर्स और लुटेरे जो हैं जिन्होंने हमारे टेम्पल्स को बर्बाद किया, इनको हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। पुलिस ने संभल के अंदर थ्रेटन किया है कि अगर कोई भी इस मेले को मनाएगा, जो वैसे तो सदियों से चल रहा है, लेकिन अब अगर किसी ने मनाया या इनको सेलिब्रेट इन लुटेरों को किया, तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बस भाईजान, आपके लिए लुटेरा है और हमारे लिए तो हीरो है ना, तो ऐसे ही है। महमूद गजनवी को आप लुटेरा कह रहे हैं तो आप मतलब कैसे आप बात कर रहे हैं है जी। तो खैर, उनको असल में तकलीफ यह है कि जो सोमनाथ का मंदिर आके इन्होंने गिरा दिया था, तो उसके ऊपर इनको बड़ी तकलीफ है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। वायरल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं जनाब, उन्होंने आज एक रिपोर्ट निकाली है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न हैं कि ये जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज, मीडिया, सिविल सोसाइटी पे जो बेतहाशा अटैक्स आने लगे हैं, उसके लिए जो है इंडिया एक सिग्नेटरी है ये ह्यूमन राइट्स कमेटी का, तो उसको उसके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, टारगेटेड एंड आर्बिट्रेरी किलिंग्स हो रही हैं, इंटिमिडेशन, हरासमेंट हो रही है, और जो एचआर के जो डिफेंडर्स हैं यानी कि ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर्स और जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा लंबी लंबी डिटेंशन चल रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमने इंडिया को 78 कम्युनिकेशंस भेजे थे इन द लास्ट 5 ईयर्स फ्रॉम मार्च 7, 2019 से मार्च 6, 2024 में, लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर 18 जो कम्युनिकेशंस थी। तो यानी आप सोचेंगे 78 में से सिर्फ 18 का इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब दिया, बाकी का नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी हमारा कंसर्न है कि ये बहुत ज्यादा रेट्रिक जो है डीह्यूमनाइजिंग और हेट जो क्राइम्स के, ये बहुत ज्यादा आपने हाइटन कर दिया है। और जनाब, सिनेमा में आप कैसे बोलते हैं कि कोई सक्सेसफुल है डायरेक्टर, यही बोलते हैं ना कि भाई इसकी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, 200 करोड़ बनाए या बॉक्स ऑफिस में बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया। अब एक ऐसे हैं डायरेक्टर इंडिया के जो कि 35 इयर्स का उनका करियर है, 36 उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं हिंदी, 12 और बनाई हैं तेलुगू और जो है तमिल, तो मतलब है इतनी कम फिल्में तो बनाई हैं लेकिन उसके अंदर फ्लॉप्स जो हैं 36 हैं। अब ये कौन है? ये है राम गोपाल वर्मा। फिर भी इनको जो है जनाब माना जाता है आइकॉनिक डायरेक्टर। इनकी जो लास्ट 3 जो बस रिलीजेस थी उन्होंने हार्डली 1 करोड़ बनाया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और 6 फिल्में एवरेज रही थी, बहुत सारी फिल्में जो हैं बिलो एवरेज रही थी, एक जो थी सेमी हिट थी। तो 90s में इन्होंने जो 3 बड़ी फिल्में बनाई थी वो थी शिवा, रंगीला एंड सत्या, जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ लोग भी इंट्रोड्यूस किए थे फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, उर्मिला मटोडकर, उन्होंने काफी इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन वो कहते हैं जी कि इनको इसलिए आइकॉनिक माना जाता है विद ऑल हिज 26 फ्लॉप्स, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड स्टोरी टेलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इसलिए इनका लेगेसी रहेगा। इम्तियाज अली जो है उनसे पूछा गया कि अमर सिंह चमकीला के ऊपर जो आपने फिल्म बनाई थी तो उसमें मर्डर एंगल इतना कम क्यों था, हालांकि स्टोरी तो यही बनती थी कि इसको इतने पॉपुलर जो सिंगर को मर्डर कैसे किया गया। उन्होंने कहा मुझे मर्डर वर्डर कुछ नहीं दिखाना था, ना तो मुझे कोई क्राइम स्टोरी बनानी थी, मुझे तो एक लव स्टोरी दिखानी थी, क्योंकि लव स्टोरी के ऊपर लोगों ने कभी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, और इसीलिए मैंने फिल्म के शुरू में ही वो हल्का फुल्का मर्डर की बात कर ली और बाकी सारी फिल्म के अंदर मैंने चमकीला की जो लव स्टोरी थी उसके ऊपर बात की, और मेरा जो फिल्म का मेन फोकस था वही रहा, क्योंकि मैंने पहले जब फिल्म लिखी तो वो क्राइम मुझे लग रहा था तो वो मैंने फाड़ के फेंकी। मैंने कहा नहीं, ये तो लव स्टोरी होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने उसको एक जो है मर्डर और क्राइम फिल्म के बजाय एक लव स्टोरी बनाया। फोर्ब्स की जनाब आई है लिस्ट, और अगेन ये लिस्ट भी बड़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि इसके अंदर भी एक जो बंदा है उसने कॉमेडियन, उसने कोई इतने बड़े हिट्स भी नहीं दिए हैं, फिर भी जो बड़े बड़े जो हीरोज हैं जैसे कि टॉम क्रूज, उनसे भी ज्यादा इसने कमाया है।
इसके अंदर जो लिस्ट आई है उसमें हाईएस्ट पेड एक्टर्स तो है वो तो ड्वेन जॉनसन ही है, क्योंकि उसकी जो टू बिग रिलीजेज आई थी मोयाना 2 एंड रेड 1, लेकिन जो कॉमेडी की दुनिया में है जिस बंदे ने 81 मिलियन डॉलर्स कमाए इन 2024 में और ऑल टुगेदर जो ग्रॉस इन्होंने किया 108 मिलियन का, वो है केविन हार्ट। केविन हार्ट जो है वो नंबर 3 पे है। ड्वेन जो जॉनसन है उसने 88 मिलियन बनाया, रायन रेनॉल्ड्स ने 83 मिलियन और हार्ट ने जो है वो बनाए 81 मिलियन। और ये आगे निकल गए हैं हॉलीवुड आइकॉन्स और सुपरस्टार्स जैसे कि टॉम क्रूज, जिसने के सिर्फ 15 मिलियन ही बनाए, जो कि मुझे बड़ी हैरत हुई देख के। जैक ह्यूमन ने 50 मिलियन, ब्रैड पिट ने 32 मिलियन और जॉर्ज क्लूनी ने 31 मिलियन। तो जनाब ये बड़ी हैरत की बात है। पीसीबी जो है जी उसने आज फिर से एक रिमाइंडर भेजा है आईसीसी को और उसने कहा जी कि हमको रिस्पॉन्स दो जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी के पोस्ट मैच जो सेरेमनी किया था उसके अंदर हमारे बंदे को क्यों आपने जो है वो नहीं उसमें इंक्लूड किया। पीसीबी ने पहले भी शिकायत की थी आईसीसी को और उन्होंने कहा था कि हमारे जो सीओओ सुमेर अहमद सैयद हैं वो तो टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी थे, वो वहां पे मौजूद थे, तो उनको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्यों नहीं बुलाया गया एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जब प्राइज दिया जा रहा था। आईसीसी ने कहा कि हमने आपको जवाब पहले भी दिया है और जो है सीईओ को सिर्फ हम स्टेज पे बुलाते हैं। पीसीबी ने कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सीईओ का कोई भी जगह नहीं है, हम तो सीईओ हमारे हैं और वो वहां पे थे, आपको उनको बुलाना चाहिए था, तो आपने हमको ऐसे कैसे इंसल्ट किया, जवाब दें। आईसीसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है उसने कहा जी कि नेशनल पैडल जो चैंपियनशिप है वो हम करेंगे इस गेम को बढ़ावा देने के लिए, अप्रैल 11 से 13 के बीच में ये रहेगी एट पैडल वर्सा और ये जो है इवेंट कराया जा रहा है इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन के अंडर, पैडल एशिया इन एसोसिएशन विद पैडल वर्सा एंड प्ले प्रो। इसके अंदर 3 कैटेगरीज रहेंगे, मेन वेमेन एंड मिक्स्ड, और लाइसेंसेस जो हैं फ्री दिए गए हैं ताकि इस गेम को बढ़ावा दिया जाए और प्राइज मनी जो है 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज रहेंगे। इसमें जो विनर्स और फर्स्ट और सेकंड रनर्स अप है उनको अच्छी फिर जो है वो पैसे दिए जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी जो है वो अब आइडेंटिफाई करेगी पाकिस्तान टीम को टू कम्पीट इन एशियन पैडल चैंपियनशिप इन रियाद इन अक्टूबर दिस ईयर। तो अब इसके ऊपर काम जो है शुरू हो गया है। और जनाब बांग्लादेशियों ने तो चंगा काम फड़िया, 15 बांग्लादेशी जो हैं उन्होंने क्लेम ये किया कि जी हम जो है बांग्लादेश का क्रिकेट टीम है, लेकिन उनको मलेशिया में अरेस्ट किया गया और उनको एंटर नहीं होने दिया गया। ये कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि हम क्रिकेट टीम है, तो मलेशियन बॉर्डर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने कहा कि जी आप कैसे हमको डिसीव कर सकते हो, आपके पास कोई आपके कोई लेटर्स है, कोई आप इधर गेम खेलने आए हो, कोई आपके अपने कोई आईडी कार्ड्स है, तो उनके पास नहीं थी, हालांकि उन्होंने क्रिकेट के जर्सीज तो पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप एक इनविटेशन लेटर ही हमको दिखा दो जो आपको टूर्नामेंट की तरफ से आया, तो कुछ भी ये नहीं दिखा सके, जिसकी के वजह से फिर पेनांग क्रिकेट जो है उन्होंने कहा जी कि हमको कुछ भी एविडेंस नहीं मिला हुआ है। और इन्होंने फिर क्रिकेट बोर्ड में जो पेनांग जो क्रिकेट बोर्ड है उसको उसमें फोन किया और उनसे पूछा कि भाई आपका यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग मैचेस खेलने आए हैं, मार्च 21 से 23 तक ये चलेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह के कोई क्रिकेट के मैचेस जो है मलेशिया में नहीं हो रहे हैं। मतलब भाईजान मजाक समझा आया, एक भी दो भी बंदा नहीं, पूरे 15 बंदे जर्सीज पाके आ रहे हो किसी बांग्लादेश की। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ओपनर जो हैं हमारे, दिस इज एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जनाब, ऑस्ट्रेलिया के हमारे टेस्ट ओपनर जो हैं उस्मान खाजा साहब, उन्होंने आज फिर से कहा है कि मैं पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया है, ये जो अभी ओवर 400 बंदे फिर से इसराइल ने मारे हैं उसमें 130 बच्चे थे, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट जो है वो पोस्ट जो की थी इसने यूएस एक्टिविस्ट उमर सुलेमान ने, वो इन्होंने फिर से शेयर की है अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि एक बच्चे का लाश दिखाया जा रहा है और इन्होंने भी उसको दिखाते हुए कहा कि 130 किल्ड, अपने फेसबुक पे इन्होंने लिखा इन जस्ट वन डे फॉर नो रीजन एट ऑल, और रीजन उसका सिर्फ ये है कि इन्होंने इसराइल ने सीज फायर ब्रेक किया है। और इमेजिन करो अगर ऐसा अपोजिट साइड पे होता, यानी कि ऐसा कभी हमास करता, तो फिर दुनिया में कितना तूफान आ गया होना था, कितना आउटरेज आ जाता, और इसका साफ मतलब है कि ऑल लाइव्स आर नॉट इक्वल। भाईजान सानू ते पता है कि साढ़े अपने मुल्क दे विच इत्थे कनेडा दे विच वी ब्लैक लाइव्स मैटर, इंडिजनस लाइव्स मैटर, व्हाइट लाइव्स मैटर, सिर्फ साड़ी ब्राउन लाइव मैटर नहीं करती हैं जी। तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल जो है इसका मतलब है कि ऑल लाइव्स आर्ट इक्वल। और उन्होंने कहा जी कि ये जो बच्चे हैं 130, ये किसी भी एक स्टोरी में या किसी भी एक रिपोर्ट के फुट नोट्स पे चले जाएंगे और ये सिर्फ एक नंबर हिस्ट्री में बन के रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन बच्चों के भी नाम थे, इनकी माएं थी, इनके बाप थे, इनके बहन भाई थे, तो ये भी इंसान थे। और ये हम जो है ब्रूटैलिटी को नॉर्मलाइज करते चले जा रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा, मुझे अफसोस है कि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं नॉर्मलाइज ब्रूटैलिटी को, और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये अभी तक जो है गाजा के अंदर चल रहा है। हुण पायान फिर तुहाडे पिछे आ रहे हैं, आईसीसी तुहानू फेर बैन करेगा। आपको पता है कि इससे पहले भी इन्होंने जो है वो अपने जूतों के ऊपर लिखा था, जो पैलेस्टाइन के साथ सपोर्ट शो किया था, और आईसीसी ने इनको कहा था कि भई ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। और इन्होंने कहा था जी कि मैं तो बड़ा साइलेंट, मेरा म्यूटेड सा मेरा तो जो है वो प्रोटेस्ट है, और इन्होंने काली पट्टी भी बांधा था उसके लिए। तो उन्होंने कहा जी कि बाकी जो सारे लड़के हैं वो तो बहुत किस्म के सिंबल्स डालते हैं, कोई जानवर, कोई और, तो उसको तो नहीं, आपको वो तो आईसीसी का फिर कोड नहीं ब्रेक हो रहा, मैंने एक पैलेस्टाइन का झंडा या कुछ बना दिया तो वो भी अपने जूते के ऊपर, तो वो आपको इतना हो गया। बहरहाल जी, हूं फिर आईसीसी दी आनगियां पिछे इसते इंक्वायरियां बेचारे दे, लेकिन एटलीस्ट कैरेक्टर तो ये दिखा रहा है
जो अपने एंड से हो सकता है, वो
जो इनके अपने एंड से हो सकता
वो कर रहा है। बाकी जो है वो
अपने फेसबुक पे उसने आज ये सारी तस्वीरें भी डाली हुई हैं,
जबरदस्त। और आप न्यूज सुना रहे थी पैडल की,
हाँ, पैडल फेडरेशन
बेसिकली दो गेम है जो पिछले दो चार साल
हो रही है
नॉर्थ अमेरिका में पिकल बॉल, और यूके में, और जो साउथ एशियन जैसे खासकर पाकिस्तान वहां है पैडल, और पैडल सिंध में बहुत एक्टिव हुआ हुआ है।
आमिर, तुम्हारा सिंध काफी एक्टिव हुआ हुआ है। मैंने अभी बताई थी ना दो दिन पहले भी खबर, कराची से बेशुमार लड़के और लड़कियां जो हैं गए हुए थे यहाँ पे अमेरिका में, मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया
जी,
तो वो काफी वो हुए।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो पैडल की बात कर रहा था उसमें पिछले दिनों बिलावल साहब, हमारे मेयर मुसा वहाब साहब, और वजीर आला सिंह, ये सब भी पैडल खेलते हुए नजर आए।
अच्छा,
तो गवर्नमेंट लेवल पर जो है इस गेम को काफी सपोर्ट किया जाए। ये टेनिस और उस जैसे पिकल बॉल है ना, टेनिस के बीच की चीज है, इसी तरीके से पैडल जो है वो भी एक्चुअल टेनिस नहीं है, लेकिन टेनिस की तरह ही खेला जाता है, वैसे उसका कोर्ट होता है, रैकेट वैसा नहीं है।
अच्छा,
रैकेट में क्योंकि टेनिस के जो रैकेट है उसमें वो होती है, क्या कहते हैं उसको, जालियां होती हैं।
हाँ, जालियां होती हैं। हाँ।
ये पूरा फ्लैट है।
अच्छा,
अगर वो इमेज अभी जिशान के पास अगर रखी,
हाँ,
पैडल अगर आप देखें
दिखा रहा था, हाँ।
तो वो पूरा सॉलिड है,
यानी कि जैसे वो जो टेबल टेनिस का जैसे होता,
जैसे
है,
टेबल टेनिस, हाँ। लेकिन उसके अंदर होल्स आपको मिलेंगे,
अच्छा,
एयर पास करने के लिए, और डिफरेंट मटीरियल, तो कार्बन फाइबर है, कार्बन ग्लास है,
हम दिखा रहे थे
तो जो इमेजेस थे वो उस तरीके का पैडल है। और ये सिंध गवर्नमेंट काफी, क्योंकि वो बिलावल साहब को भी खेलते हुए देख लिया, मुझे वहां भी खेल रहे हैं, गवर्नमेंट सिंध भी इसको काफी प्रमोट कर रही है।
ये देख रहे हैं, हाँ,
ये थोड़े सॉलिड होते हैं और इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, ये काफी पाकिस्तान में खासकर गवर्नमेंट सिंध जो है इसको काफी सपोर्ट कर रही है, जैसे कि आपने कहा कि एक्टिविटीज भी वहाँ, टूर्नामेंट्स भी शुरू हो गए,
बहुत ज्यादा तो काफी स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे जाने लगे हैं।
मुझे लगता है कि ये वाहिद सिंध का, मुझे लगता है बहुत सारे काम किए होंगे सिंध में, लेकिन अगर स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग बच्चों को, अब क्रिकेट खेलते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें अब कहीं ऑल्टरनेट,
दुनिया में क्रिकेट तो नहीं रहेगा ना, अब ये जो ओलंपिक्स वगैरह जो होते हैं इसमें खाली क्रिकेट तो नहीं है, क्रिकेट तो होती ही नहीं है वैसे, उसमें देखो ना हजारों और गेम, भाई स्विमिंग में आप करें, आप उसमें शूटिंग में आप करें, पैडल में, ये जैसे आप कर रहे हैं, फुटबॉल अपना बड़ा लियारी के वो जो लड़के थे फुटबॉल खेलते थे जबरदस्त,
तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए।
सखर में वो एयरपोर्ट को,
सखर में एयरपोर्ट खुल जाएगा, वो जहाज उड़ेंगे, जैसे गवादर में भी खोल तो दिया, जहाज नहीं उड़ रहे हैं वहाँ,
अभी करेंगे, वो करेंगे,
ठीक है जरा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में चीजें और बेहतर से बेहतर होती जाए इंशाल्लाह। चलें शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शामिल होने का, इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रही, तो आपसे मुलाकात होगी कल।
अब मैनेजमेंट ना बोलना, मैनेजमेंट बोल,
वो अभी मैं बोलता हूँ। चलें जनाब, सामईन और नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऐसे शामिल रहने का, और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से जो है अब इजाजत लेंगे आपका, मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
Drive through facility, exit 579 from highway 401 in Napanee, Quick Truck Lube, the one stop shop. 220660 या quicktrucklube.com, QTL, because we care. Quick Truck Lube.
ماضی سے حال، خواب سے تعبیر تک، مرض سے تشخیص، دوا سے علاج تک، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔
اپنی زکات اور عطیات سے انڈس ہاسپٹل کا ساتھ دیجیے اور لاکھوں مریضوں کا مفت اور معیاری علاج ممکن بنائیں۔
فار ڈونیشنز وزٹ انڈس ہاسپٹل ڈاٹ سی اے۔
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے۔
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، صوفہ سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج۔
142 کینیڈی روڈ، برامپٹن، 9058747171۔
میری پورے سال کی سیونگ $400 ہوئی ہے۔
میری سیونگ $350۔
میری سیونگ صرف $100۔
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے، میں نے سیو کیے ہیں $1,775۔
کیا چمتکار کیا، مجھے بھی گر سکھاؤ نا۔
بھائی بات سادہ سی ہے، ہمارے پاس 2 گاڑیاں اور 1 گھر ہے اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے اور یہ جادو کیا ہے آل اسٹیٹ پہ۔